बहुत प्यारा सा गीत अभी बजा आपके कानों में गूंजा। क्या है अपने अंदर की आश, क्या है दिल की आवाज, क्या ये सब को आता है मन में कि हमको बाबा तुम्हारे आपके समान बनना है। जिनके दिल में ये आता है कि हमको बाबा के समान बनना है वो हाथ उठाएं। अच्छा सभी, अच्छा कोई ऐसे भी हैं जो सोचते होंगे मैं कैसे बाबा के समान बन सकूंगी, मैं तो बहुत छोटी हूँ या मैं तो नई हूँ, मैं इतना कैसे पुरुषार्थ कर सकूंगी। जो ऐसे सोचते हैं वो हाथ उठाए, कोई भी नहीं, दो चार उठा रहे हैं। चलो सच तो बताया, हाँ सच बताया, इसके लिए आफरीन है। तो देखो आज जो मेरा विषय है, बाप दादा की आशाएं कुमारियां कैसे पूर्ण करें, कुमारियों के प्रति बाप दादा की आशाएं क्या है, बाबा के सामने जब कुमारियां होती थी तो बाबा कुमारियों को संबोधित करते थे और उनकी महिमा करते थे, जब माताएं होती थी तो माताओं की महिमा करते थे, युगल होते थे तो युगलों की महिमा करते थे, केवल भाई होते थे तो उनकी महिमा करते थे। तो अगर बाबा यहाँ होते और इतनी सारी कुमारियों को देखते तो बाबा के दिल के अंदर क्या उद्गार निकलते, वो भी कभी सोचा? क्या बाबा की उम्मीदें होती कन्याओं के प्रति, आशाएं होती कुमारियों के प्रति? क्योंकि साकार बाबा को तो हमने अनुभव किया। जब भी हम कुमारियां बाबा के सामने जाती थी तो बाबा अपनी आशाएं बताते थे। कई बार बाबा पूछते थे, बच्ची किससे शादी करोगी, कोट पैंट वाले से शादी करोगी या पीताम्बरधारी से शादी करोगी? तो क्या जवाब देते होंगे हम लोग, पीताम्बरधारी से, कोट पैंट वाले से नहीं है? तो हम जब जवाब देते थे कि हम कोट पैंट वाले से नहीं करेंगे, पीताम्बरधारी से करेंगे, तो बाबा कहते थे फिर तो आपको उन जैसा बनना पड़ेगा। पीताम्बरधारी से करना माना श्री कृष्ण की दुनिया में जाना, श्री कृष्ण को अपना सखा बनाना, श्री कृष्ण के साथ रास करना, श्री कृष्ण के साथ महल में रहना, माना उन जैसा बनना होगा। और ब्रह्मा बाबा तो हमारे सामने थे जो श्री कृष्ण बनने वाले हैं। तो बाबा कहते थे फिर तो बाप समान बनना पड़ेगा, तब तो श्री कृष्ण की दुनिया में जा सकोगे, ऐसे ही तो नहीं जा सकोगे, ऐसे तो नहीं उनसे रास कर सकोगे। तो हम लोग बहुत फोर्स से कहते थे बाबा हम जरूर करेंगे, हम जरूर बनेंगे। फिर बड़ी दीदी होती थी तो दीदी फिर हम लोगों से पूछती थी, इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है? तो सब कहते थे हाँ दीदी हिम्मत है, तो उसके लिए ये करना होगा करेंगे, हाँ करेंगे, ये करना होगा करेंगे, हाँ करेंगे, सब में कहते थे हाँ करेंगे, और डरेंगे तो नहीं, का नहीं डरेंगे, तो उसी समय दीदी ऐसे करती थी तो सब डर जाती थी, समझा ना, डरा ऐसे हंसाती थी दीदी ऐसे ना, कोई जानबूझ के जबर उसी समय कोई ऐसे हाथ कर ले तो दूसरा घबरा जाएगा ना कि ऐसे हाथ क्यों किया, तो एकदम घबरा जाती थी। तो दीदी कहती थी देखो डर गई, ये क्या कृष्ण को वरेगी, ये क्या पीताम्बर धारी से शादी करेगी, हंसी में कहते थे। लेकिन बाबा कहते थे नहीं, ये तो बहुत बाबा की होशियार बच्चियां हैं, ये तो क्यों नहीं करेगी। फिर बाबा दूसरा प्रश्न पूछते थे कुमारियों से, दूसरी क्या उम्मीद रखते थे, बाबा पूछते थे कि अगर आपको आज कहा जाए कि इंग्लैंड की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, वो गद्दी हम आपको दे रहे हैं, तो आपको चूज करना है कि वर्तमान समय जो इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ है वो सिंहासन चाहिए या सतयुग का सिंहासन चाहिए, तो दोनों में से क्या पसंद करोगी, यहाँ का सिंहासन नहीं चाहिए है? इतनी सारे देखो इंग्लैंड की महारानी क्या नहीं, उनके पास इतना ताज है हीरों से जड़ा हुआ, क्या उनके आभूषण है, क्या श्रृंगार है, इस उम्र में भी कितना उनका मान है, तो यहाँ का नहीं चाहिए ताज तख्त तिलक। तो बहने कहती थी कुमारियां नहीं बाबा ये नहीं चाहिए, बाबा ये तो कांटों का ताज है। तो सचमुच कांटों का ताज है। आज ही हम अखबार में पढ़ रहे थे कि अभी तो क्वीन एलिजाबेथ जो है ना वो तो बहुत बूढ़ी हो गई है, काफी बुजुर्ग है, 90 साल से तो ऊपर हो गई है, और उनका बेटा उनका पोता वो सब यही कहते बस हमको ये राजा ही चाहिए ही नहीं, ये राजा ही चाहिए ही नहीं, माना इंग्लैंड की जो सॉवरेंटी है हमको चाहिए ही नहीं। उनका बेटा पोता सब जो है वो सब कहते कोई हमारा फोटो भी न ले, क्यों हमको अपनी प्राइवेट लाइफ जीनी है, हमको ये सब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो मानो हर एक आज तंग है इस कलयुगी दुनिया से, इतने बड़े बड़े VIPs हैं, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनके आगे पीछे कमांडोज घूम रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी उनको मिलती है क्योंकि हिट लिस्ट में है, कहाँ वो मौका मिले उनको उड़ा दें, तो इतना डर तो है ना दुनिया के अंदर। तो हम बच्चे देखो कितने सेफ बैठे हैं, इस कलयुगी दुनिया का कुछ चाहिए, जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा तो चाहिए ना, वो हाथ उठाएं, कुछ भी नहीं चाहिए, सच्ची कुछ नहीं चाहिए, पर कहां पर थोड़ी थोड़ी दिल लग जाए तो हाँ। मुझे याद आता है हमारी पहली कन्याओं की जो ट्रेनिंग हुई थी मधुबन में बाबा के अव्यक्त होने के बाद, 1969 में अव्यक्त बाप दादा ने जब पहली मुरली चलाई तो दादी जी ने बाप दादा से पूछा कि बाबा अभी मधुबन में हम यानी क्या करेंगे, क्योंकि मधुबन में आना माना बाबा मम्मा से मिलना, बाबा मम्मा से ही हम सब पलते थे, मम्मा बाबा इतना प्यार देते थे, अब बाबा मम्मा तो गए बाबा भी साकार में नहीं है तो मधुबन में लोग क्यों आएंगे। तो बाबा ने कहा अभी तक जो सेवा हुई वो तो चीटी मार्ग की सेवा थी, और अभी जो सेवा होगी वो तो विहंग मार्ग की सेवा होगी, क्योंकि बाप दादा कंबाइंड होकर के सेवा करेंगे, और मधुबन में तो इतने आएंगे जो आपको अनेक मकान बनाने पड़ेंगे। तो दादी तो सोच में पड़ गई, हाँ यार हम तो सोचते भी कौन आएगा, बाबा नहीं है। लेकिन बाबा ने भविष्य के बहुत प्लान्स बताए, और कैसे बाबा ने कहा अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करो, कुमारियों की ट्रेनिंग, कुमारों की ट्रेनिंग, युगलों की बठियां। तो मानो बाबा के साकार में ये बठियां कुछ नहीं होती थी, पर बाबा मिला सब कुछ मिला। सवेरे से रात तक बाबा से खेलना, बाबा से सुनना, बाबा से भोजन करना, बाबा के साथ झूले पर बैठना, बाबा के साथ ही सब कुछ। थोड़े तो लोग थे, थोड़ी छोटी छोटी पार्टियां जाती थी, 20-25 भी अगर मधुबन में पार्टी के गए तो लगता था हाउसफुल हो गया, 20-25 ही, क्योंकि छोटा सा मधुबन था। लेकिन बाबा तो भविष्य का इतना सुनाते थे मुरलियों में, हिस्ट्री हॉल में बाबा की मुरली चलती थी और बाबा के आगे माइक कभी नहीं रखते थे। बाबा कहते थे माइक पर थोड़ी कोई क्लास होता है, माइक पर थोड़ी कोई पढ़ाया जाता है, माइक तो होता है जब बहुत हजारों लाखों हो, माइक पर पढ़ाई नहीं होती है। तो बाबा को माइक पसंद ही नहीं था, परंतु अभी इतने हो गए तो माइक के बिना कैसे आवाज जाएगी। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलाते थे, लेकिन इतनी बुलंद आवाज होती थी जैसे दादी जानकी आती ओम शांति करती ना दादी बड़ी शक्ति से, तो बाबा भी इतनी शक्ति से बोलते थे। जो सचमुच हिस्ट्री हॉल तो वैसे ही छोटा तो था ही, तो माइक की तो वैसे जरूरत नहीं भी थी, पर और बैठे होंगे अगर 20-25 लोग और बाबा की इतनी बुलंद आवाज होती थी, तो बाबा से बच्चे पूछते थे कि बाबा आपने तो आज ऐसे सुना है जैसे आपके आगे तो हजारों लोग बैठे हैं। बाबा कहते थे बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, बच्चे बहुत आने वाले हैं, बहुत आने वाले हैं, बहुत बच्चे आएंगे, बहुत आएंगे। तो बाबा बहुत आएंगे तो लगता था बाबा कितना दूरदर्शी होकर के क्या नहीं भविष्य देख रहे हैं। तो उस समय लगता था कौन आएंगे, कितने आएंगे, थोड़े से ही देखते थे। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो लगता है जो बाबा ने साकार में कहा वो सब अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। मन नचित ये सब बातें कैसे बाबा कर रहे हैं। मकान बनाने पड़ेंगे, बाबा हर मुरली में कुछ न कुछ कहते हैं। विनाश की बातें बाबा करते हैं, उस समय तो विनाश का कुछ किसी को संकल्प भी नहीं था। भले अमेरिका रशिया उस समय हथियार बनाते जा रहे थे, बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि अगर ये दोनों मिल जाए तो दुनिया पर राज्य कर सकते हैं। तो उस समय जो बाबा की मुरली चली उस समय दोनों देश अमेरिका और रशिया बहुत होड़ उनकी चल रही थी रेस हथियार बनाने की, क्योंकि अगर एक देश दूसरे पर हथियार चलाता या बॉम्ब चलाता तो दूसरा भी तैयार है वो भी चलाता, इसीलिए वो डर के मारे कुछ भी नहीं करते थे। तो बाबा कहते थे दोनों ये मिल जाए तो पूरी दुनिया पर राज्य कर सकते, इतने हथियार इतने बॉम्ब उनके पास हैं। लेकिन ये ड्रामा में नोंद नहीं है। तो ये क्यों बाबा ऐसे कहते थे, और विनाश की बातें तो बाबा बहुत करते थे। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था जब बाबा की साकार में मुरली चली कि कुछ ऐसे विनाश भी हो सकता है। लेकिन बाबा भविष्य देखते थे, और आज जब हम वो मुरलियां पढ़ते हैं तो लगता है कितनी प्रासंगिक है। इस समय जो वो मुरलियां जो आज से बाबा ने 50-60 साल पहले चलाई होंगी वो आज कितनी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि बाबा भविष्य को देखते थे। बाबा कहते थे विदेश में भी तुम बच्चे जाएंगे, विदेश वाले जब भारत में आएंगे तो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो हमारी दादियां सोचती थी कौन जाएगा विदेश, हमको अंग्रेजी तो आती नहीं है। तो बाबा कहते थे बच्चे अंग्रेजी भले नहीं आती, आपको बहुत इंटरप्रेटर मिल जाएंगे, जो आप हिंदी में बोलेंगे वो अपनी भाषा में करेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई अंग्रेजी सीखने की भी जरूरत नहीं। तो देखो आज 140 देशों में बाबा के सेंटर्स हैं, और मेरा भी ये सौभाग्य रहा है 70 देशों में से भी अधिक देशों में गई हूँ बाबा के सेंटरों पर। और कैसे यहाँ बैठे बाबा की मुरली चलती है और इंटरनेट के माध्यम से सभी देशों में बाबा की मुरली लाइव उनको इंग्लिश में मिलती है या फिर अपनी भाषा में उसी समय करते हैं, कभी सोचा भी नहीं था। तो वो जो बाबा ने साकार में बातें कही, अभी प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। तो जो पहली कुमारियों की ट्रेनिंग चली उसमें हम थे, जिसमें आशा बहन भी थे और आरती बहन और चंद्रिका बहन, ये सब हम उस लेवल के हैं जो साकार में बाबा मम्मा से हम लोगों ने पालना ली है। तो हम लोग कॉलेज पढ़ते थे तो अव्यक्त हुए, जब बाबा अव्यक्त हुए तो ट्रेनिंग रखी कुमारियों की, और उन कुमारियों की ट्रेनिंग थी जिन्होंने ये निश्चय किया कि अभी इस ट्रेनिंग के बाद हम सेवा केंद्रों पर जाएंगे। उनकी ट्रेनिंग थी जो जिन्होंने कहा हम नहीं, अभी फाइनल नहीं है, हमने कुछ भी निश्चय नहीं किया है, उनकी नहीं रखते थे। और उस समय हम लोग पता है कितनी थी, केवल 30 कुमारियां, और अभी मैंने सुना 3000 कुमारियां। हाँ, तो देखो क्या था उस समय और क्या अभी, कितना अंतर। तो मुझे याद है बाबा हर तीसरे दिन, एक महीने की ट्रेनिंग थी, हर हफ्ते कम से कम बाप दादा बच्चों से कुमारियों से मिलने के लिए आते थे। तो एक बात बाबा की मुरली की मुझे कभी नहीं भूलती, तो बाबा ने कुमारियों से पूछा, बाप दादा ने 69 में 15 मई से 15 जून तक हमारी ट्रेनिंग हुई 69 में, तो बाबा ने कुमारियों से पूछा कि बाबा कुमारियों को इतना प्यार क्यों करते हैं, ये प्रश्न किया बाबा ने, कुमारियों को बाबा इतना प्यार क्यों करते हैं। तो हरेक कुमारी ने अपनी अपनी ढंग से जवाब दिया, कुमारियां पवित्र है इसीलिए करते हैं, कुमारी बंधन मुक्त है इसलिए करते हैं, माना सब अच्छी अच्छी बातें। तो बाबा ने कहा ये तो ठीक है, ये तो अच्छा है, और बाबा और पूछते गए, अभी कितना सुनाएंगे, महिमा सारी कुमारियों की कर डाली। फिर बाबा ने कहा बाबा बताए क्यों बाबा इतना प्यार करते हैं कुमारियों को, ताकि कुमारियां किसी और के प्यार में न फंस जाए। क्योंकि कुमारियों को दूसरे के प्यार में फंसना बड़ा आसान है, किसी ने थोड़ा फुसलाया, किसी ने मोबाइल दिया, किसी ने कुछ घड़ी दी, किसी ने अब कार में घुमाया, बस उसे दिल लग गई। ऐसे माया के अलग अलग रूप आते हैं कुमारियों के पास, इसीलिए उनके बहकावे में आ जाते हैं और फिर उनको अपना दिल दे देते हैं। तो ये कुमारियों की बहुत बड़ी कमजोरी है। तो लेकिन फिर उसके बाद बाबा ने सारी मुरली उस पर ही चलाई कि कभी भी किसी में आंख न डूबे, बाबा हमको क्या से क्या बनाता है, क्या से क्या देता है, इसलिए वो अगर सदा याद रहे तो इस कलयुग की दुनिया में तो आंख कभी जाए ही नहीं। क्योंकि मम्मा का एक सुंदर उदाहरण था, हमारे निर्वैर भाई रमेश भाई बताते हैं कि एक बार मम्मा बॉम्बे में आई थी, तो रमेश भाई मधुबन अपने बॉम्बे में रहते थे और साथ और निर्वैर भाई भी वहीं रहते थे, तो मम्मा को घुमाने ले गए, मम्मा मुंबई देखो, मुंबई देखो, मायावी नगरी बाबा कहते थे, तो घुमाने ले गए। तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उसके ऊपर वो ये जो होर्डिंग्स होते हैं ना, वो लाइट वाले होर्डिंग्स चमकते हैं, फिर वो रंग बदलते हैं, बहुत कुछ बहुत आकर्षक होते हैं होर्डिंग्स जो इनके बोर्ड साइन बोर्ड्स। तो अब वो मम्मा की आंखें तो बिल्कुल नीचे, मम्मा तो जैसे किसी को देख ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं देख रही है। तो रमेश भाई और निर्वैर भाई आपस में बात करे कि ये जो होर्डिंग है ना, ये जो बोर्ड है देखो कितना सुंदर है, कैसे लाइट बदल रही है, कैसे ये हो रहा है, हम लोग भी अपना सेंटर के बाहर जो बोर्ड लगाए ना ऐसे बना सकते हैं। तो अभी मम्मा आगे बैठी है, मम्मा तो जैसे सुन रही है नहीं सुन रही है बराबर। तो बाबा ने, तो मम्मा को रमेश भाई ने या निर्वैर भाई ने कहा मम्मा आपने वो बोर्ड देखा, देखो कितना सुंदर था, हम ऐसे बोर्ड बना सकते हैं। मम्मा ने कहा कौन सा बोर्ड, मम्मा ने तो देखा ही नहीं। तो मम्मा से कहा, मम्मा इतना बड़ा बोर्ड था कैसे नजर नहीं गई? बाबा मम्मा नजर नहीं गई? मम्मा ने कहा नहीं, जो मेरे काम का नहीं है, जो मेरे मतलब का नहीं है, तो मैं वहां मेरी नजर जाए क्यों? मानो इतनी बड़ी बात मम्मा ने कह दी कि निर्वैर भाई और रमेश भाई उस समय बहुत बड़ी शिक्षा ली। वो सुनाते अपना अनुभव मम्मा का, तो इतनी बड़ी शिक्षा ले ली। मम्मा भी तो कुमारी थी, कई बार दादी जानकी कहती है, मैं मम्मा से पूछती थी कि मम्मा आप मम्मा बनी कैसे, तो कैसे मम्मा बनी। बहुत सारी बातें मम्मा की निकली है, बहुत सारी पॉइंट्स निकली है, मम्मा क्या क्या पुरुषार्थ था, तो कैसे बाबा भी मम्मा की कितनी महिमा करते थे। भले बाबा कहते थे बेटी है, लेकिन बाबा कहते थे मम्मा बाबा से भी आगे है, क्योंकि धक से कैसे मम्मा ने सारा त्याग किया। तो उसी समय जब हम कुमारियों की भी ट्रेनिंग चली, तो एक महीना तो थियोरेटिकल ट्रेनिंग चली, और हमारी जो टीचर्स थी, ये 69 की बात कर रही हूँ, 48 साल पहले की बात, तो जब उस ट्रेनिंग में हमारी जो सब दादियाँ हमारी टीचर्स थी, दादी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, मनमोहिनी दीदी तो थे ही, लेकिन साथ में चंद्रमणि दादी, कुंज दादी, जानकी दादी, सब दादियों को बाबा ने मधुबन में बुला लिया था। 1950 में जब कराची से माउंट आबू में आए, और 52 में हमारा पहला सेंटर दिल्ली में खुला, तो उस समय कितनी दादियों को बाबा दिल्ली भेजते थे। फिर बॉम्बे में खुला, फिर बाबा बॉम्बे भेजते थे, फिर बैंगलोर में खुला, यूपी में खुला, सब जगह खुलता गया। सब जगह जो दादियां जिन्होंने इतनी तपस्या की थी, 14 साल मट्टी में रहे थे, वो सब पक करके तैयार हुई थी, और जो कच्ची थी वो तो बेगरी पार्ट में तो सब खत्म, माना चलो दुनिया में चली गई, लेकिन जो पक्की थी उनको बाबा ने कैसे सेवा में भेजा। तो साकार में बाबा ने 52 के बाद सब दादियों को अलग अलग सेवा स्थानों पर भेजा। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए, तो फिर अव्यक्त बाप दादा ने सब दादियों को वापस बुलाया मधुबन, मानो वो साइकिल कंप्लीट, और दादियों को बुलाया, क्योंकि सारी आ गई थी बाबा के अव्यक्त होने पर। तो कैसे वो ट्रेनिंग चली, और जिनको जाना था वो तो फिर वापस गए, लेकिन मधुबन में दादी प्रकाशमणि को रखा, वो बॉम्बे में रहती थी। मम्मा जब थी तो दीदी मनमोहिनी वो दिल्ली में रहती थी, मम्मा के बाद बाबा ने दीदी मनमोहिनी को मधुबन में बुला लिया। ऐसे बहुत बाबा ने किया और मधुबन में स्थाई बनाया। लेकिन उसके बाद फिर बाबा ने सबको सेंटरों पर भेजा। साकार में बाबा ने बहनों को कभी मधुबन में नहीं रखा, अव्यक्त के बाद तो रखा, लेकिन कभी भी कन्याओं को मधुबन में, या दादियों को जो कन्याएं थी सब, उनको मधुबन में नहीं रखा। बाबा कहते थे तुम्हारा स्थान सेवा स्थान है, और बाबा के अव्यक्त होने के बाद मधुबन का आकर्षण बढ़ा, और कैसे ये सब दादियां मधुबन में रही। लेकिन बाबा के अंदर में बहुत आश थे, ये बच्चियां बाबा का नाम रोशन करेगी। तो मुझे याद है 1967 में, कैसे मैं उसके पहले बाबा मुंबई में आते रहते थे हर साल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीना बाबा मुंबई में रहते थे। मैं 60 में ज्ञान में आई हूँ, तब 12 साल की थी, और मैं लगातार सेंटर पर जाती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल यूनिफॉर्म में सेंटर जाती थी, फिर स्कूल जाती थी। बाबा के आगे मैंने इंग्लिश में भाषण किया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, कॉन्वेंट स्कूल में बॉम्बे में पढ़ती थी, तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था कोई इंग्लिश में भाषण करे। अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, उस समय बड़ी बात थी। तो इसलिए बाबा के सामने जब इंग्लिश में भाषण किया, तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। देखो साकार में बाबा ने मुझे कहा, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। उस समय विदेश क्या होता है वो तो पता भी नहीं था। तो देखो कैसे बाबा ने क्या नहीं कुमारियों के प्रति सोचा। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज पढ़ने लगी 1967 में, मैं इंटर साइंस में थी, सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, तब 11 प्लस 2 और 2 था, अभी 10 प्लस 2 प्लस 3 है ना, उस समय 11 प्लस 2 प्लस 2 था स्कूल, और उसके बाद 4 साल कॉलेज, 2 फर्स्ट ईयर इंटर और फिर डिग्री कोर्स 2 साल। तो जब हम 11 स्कूल, उस समय हम जब कॉलेज में आए, सेकंड ईयर कॉलेज था, तो उस समय हमको डिसाइड करना था इंजीनियरिंग लूँ या मेडिकल लूँ, क्योंकि घर से बहुत फोर्स था कि डॉक्टर बनना है, मेडिकल लाइन लेनी है, मेडिसिन पढ़ना है, MBBS का की लाइन लेनी, क्योंकि इंटर साइंस के बाद कर सकते थे। तो और तो मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मैं क्या करूं, तो बाबा ने मुझे पत्र का जवाब दिया। आप सोच सकते हैं इतनी छोटी कुमारी को बाबा ने पत्र का जवाब दिया। बाबा सबको पत्र का जवाब देते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी बाबा को लिखता था। इसलिए बाबा की वो फेमस, बाबा का फेमस वो चित्र है पत्र लिखते हुए। तो बाबा ने मुझे, क्योंकि मैंने बाबा को लिखा, बाबा घर में सब बहुत कह रहे हैं कि तुम मेडिकल लाइन लो, डॉक्टर बनना है, तो बाबा को मैंने लिखा, बाबा मैं क्या करूं, मेरे आगे ये समस्या थी। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है और बाबा चाहते हैं तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मेरे प्रति आश जताई, रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। जब ये पत्र मुझे हाथ में आया तो हमने सोचा, मैं तो ये सोच रही थी मेडिकल लाइन लूंगी, MBBS करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और बाबा ने तो ये लिख दिया। तो बस उसके बाद लगन लग गई कि मुझे अभी और आगे पढ़ना नहीं है, बस मुझे तो बाबा की सेवा करनी है। 18 साल की तो हो गई थी, तो मुझे बाबा की सेवा करनी है, मुझे आगे नहीं पढ़ना है। अब मेरे आगे परीक्षाएं आई, क्योंकि घर से तो कोई छुट्टी न दे कि तुम जाके सेंटर पर हो। तो दादी प्रकाशमणि हमारी टीचर थी गामदेवी बॉम्बे में, हम वहीं जाते थे। तो दादी को मैंने कहा, दादी देखो बाबा की चिट्ठी आई है कि बच्ची तुमको रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करनी है, तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, मुझे बस बाबा की सेवा में लगना है, मुझे समर्पित होना है। तो दादी ने कहा, ऐसे कैसे आपको समर्पित करेंगे, घर से चिट्ठी चाहिए, जब तक घर से चिट्ठी नहीं मिलेगी तब तक आपको हम समर्पित नहीं कर सकते हैं, घर से चिट्ठी लाओ, भले 18 साल की हो गई हो लेकिन घर से चिट्ठी चाहिए। तो मैंने घर में कहा कि मुझे आगे पढ़ना नहीं है, तो इसलिए मुझे बाबा, मुझे सेंटर पर रहना है। तो घर वाले कहे कि हम तो चिट्ठी नहीं देंगे, तो घर वाले चिट्ठी नहीं देंगे और सेंटर वाले कहे चिट्ठी नहीं होगी तो सेंटर पर नहीं रखेंगे। अब मेरे आगे समस्या, बाबा कहते हैं रूहानी डॉक्टर बनना है, विश्व की सेवा करनी है, यहाँ तो सेंटर पर ही नहीं रख रहे हैं, क्योंकि चिट्ठी नहीं है, घर से चिट्ठी नहीं है, बंधन था, काफी बंधन था घर से, इसीलिए चिट्ठी कोई नहीं दे। तो मैं क्या करूं। तो उसके बाद फिर उस समय निर्मला दीदी है ना, वो बॉम्बे में रहती थी, तो उस जो अभी ज्ञान सरोवर में है और कई देश एशिया के संभालती हैं, तो उनको मैंने कहा। तो निर्मला दीदी उस समय डॉक्टर थी, अभी अभी उनकी अपनी क्लिनिक थी, हॉस्पिटल थी उनकी, और बाबा ने उनको कहा कि ये सब अभी छोड़ो और तुम बाबा की सेवा में लग जाओ और अपने पिता को कहो कि मुझे एक मकान लेकर के दो और उस मकान में आप एक ट्रेनिंग सेंटर खोलो। तो जो बाबा ने उनको कहा उसी अनुसार उसने किया, उसने उसके पिता ने उसको मकान लेके दिया, नहीं तो दहेज के लिए रखा था कि बच्ची को शादी कराएंगे, डॉक्टर तो थी, कुमारी थी। तो उसने कहा मुझे तो बस बाबा की सेवा करनी है, तो जो उनका अपना क्लिनिक था हॉस्पिटल, वो अपनी बहन को दे दिया, और खुद मकान वरना मकान लिया बाबा के कहने पर और वहाँ ट्रेनिंग शुरू की। और उस ट्रेनिंग में तब मैं इंटर साइंस में थी, उस ट्रेनिंग में हम गए थे कुमारियों की ट्रेनिंग में, वहाँ जाने मिलता था लेकिन समर्पित हो जाने की छुट्टी नहीं थी। तो जब वो ट्रेनिंग में हम गए तो उस समय मैंने दीदी निर्मला से पूछा मैं क्या करूं, तो दीदी ने कहा कि अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही है तो आप कोई बात नहीं, आप बीएससी कर लो, आप बीएससी कर लो, डिग्री ले लो और उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो मैंने कहा पर बाबा कहते हैं रूहानी डॉक्टर बनना है, बाबा कहते हैं, तो कहा कोई बात नहीं आप करना, देखो मैं डॉक्टर हूँ और मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ रही हूँ बाबा की सेवा करने के लिए, जो मुझे बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको मकान लेना है और वहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग शुरू करो बॉम्बे में कांदेवली सेंटर पर। तो वो जो कांदेवली में पहले पहले सेंटर था वो निर्मला दीदी के लौकिक फादर ने दिया था और वहाँ ट्रेनिंग शुरू की थी। अभी तो देखो मुंबई में कितनी सेवाएं हैं, लेकिन उस समय सेंटर्स तो बहुत कम थे। और तो फिर जब दीदी ने ये कहा कि मैं तो खुद मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ रही हूँ, वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, बहुत उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी, बहुत अच्छा उनका हॉस्पिटल था और वो अपनी बहन को दे रही है और खुद बाबा की सेवा में समर्पित हो गए। तो इसीलिए मुझे उसने राय दी कि अगर आपको अभी छुट्टी नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, आप 2 साल का डिग्री कोर्स ले लो, बीएससी कर लो और फिर देखो बाबा की मदद मिलेगी। तो जैसे मैंने फिर मैंने बीएससी किया, क्योंकि घर से छुट्टी नहीं थी, सेंटर पर भी रहने की परमिशन नहीं थी। तो फिर जब बीएससी मेरा एग्जाम हो रहा था जनवरी 69, ये 67 में बाबा ने मुझे पत्र लिखा था, फिर 69 जनवरी 18 जनवरी को जब बाबा व्यक्त हुए तो 18 जनवरी शाम को शनिवार का दिन था, तो मैं शाम को सेंटर पर गई, वहाँ कोर्स कराती थी, क्लास कराती थी, भाषण करती थी, म्यूजियम समझाती थी कुलाबा सेंटर में, उनके पास में रहती थी, मेरा घर वहीं था बॉम्बे में, तो सब कुछ करती थी और एक सफेद ड्रेस सेंटर पर रख दिया था और आती थी, कॉलेज से आती थी या घर से आती थी कलर्ड कपड़ों में, फिर वो चेंज करके सफेद साड़ी पहन लेती थी और सेवा करती थी, फिर चली जाती थी चेंज करके। तो इतनी परमिशन थी पर सेंटर पर रहने की परमिशन नहीं थी। तो जब मैं घर गई तो 17 तारीख रात थी, 8 बजे मैं घर गई वापस और बाबा अव्यक्त हुए 18 रात शनिवार की शाम थी और बाबा अव्यक्त हुए लगभग 9:15 बजे और 9:15 बजे के बाद कैसे दादी जी ने सब तरफ पत्र लिखे, टेलीग्राम किए बाबा के अव्यक्त होने का और सब आ जाओ। तो अब मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो घर चली गई थी। फिर 19 तारीख सुबह जब मैं सेंटर पर गई तब संडे था, रविवार था, तो जैसे संडे को मैं सेंटर पर गई, इतने भाई बहने संडे के दिन छुट्टी का दिन होता आते हैं, लेकिन उस दिन मैंने देखा जो थोड़े बहुत आए थे वो सब योग में बैठे थे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्या सब योग में बैठे हैं और मुरली नहीं चल रही है, दादियां कहाँ हैं? तो क्योंकि जैसे ही 9 बजे उनको न्यूज मिली, दादी पुष्प शांता रहती थी, बहुत दादियां रहती थी कुलाबा सेंटर पर, वो सब रातों रात कोई ट्रेन से कोई टैक्सी से कोई बस से सब रातों रात ट्रैवल करके 19 तारीख को सुबह यानी दिन में पहुंच गए मधुबन। अब मानो कि कितने आए मधुबन, अब मधुबन तो उस समय कितना छोटा था, बाबा अव्यक्त हो गए थे। अब जब 19 तारीख मैं सवेरे गई क्लास में और मैंने किसी से पूछा, सब शांति में बैठे हैं, मैंने पूछा क्या बात है आज मुरली नहीं चल रही, तो कहा बाबा अव्यक्त हो गए। मैंने कहा बाबा अव्यक्त हो गए, बाबा चले गए? बस मैं खड़ी थी वहाँ सेंटर में, वहाँ पर बालकनी में खड़ी थी, तो जैसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली मेरी टांगे कांपने लगी, टांगे एकदम कांपने लगी मैं 20 साल की थी उस समय को, 20-21 साल की, टांगे कांपने लगी और मैंने, मुझे ऐसे लगा ये आकाश जो है ना ये सब दो टुकड़े हो जाएगा और सारी धरती नीचे आ जाएगी, ऐसे मुझे महसूस होने लगा और एकदम मैं जैसे सुन्न हो गई। मेरे मुख से कोई आवाज आने के, क्योंकि मुझे लगा बाबा चले गए माना विनाश खत्म, बाबा चले गए विनाश। तो उस समय मैं जैसे बाबा मेरे सामने खड़े हुए ऐसे मुझे अनुभव हुआ और ऐसे लगा जैसे बाबा का वो अव्यक्त रूप मेरे सामने है और मैं बाबा को कह रही हूँ बाबा आप चले गए, मैंने आपकी आश तो पूरी की नहीं, बाबा मैंने आपकी आश पूरी नहीं की, आपने कहा कि आपको रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करनी है और आप चले गए, पता तो था नहीं क्या आगे पाठ होगा कुछ वो तो मालूम ही नहीं था। तो उसी समय मुझे ऐसे अनुभव हुआ जैसे अव्यक्त बाप दादा लाइट के आकार में जैसे मेरे सिर पर हाथ रख रहे और मेरे मुझे आश्वासन दे रहे हैं, बच्ची मैं गया नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमको बाबा की आश पूरी करनी है। ये बाबा का उस समय जैसे मुझे एक वाइब्रेशन आए, जैसे वो आवाज आई बाबा की कि बच्ची तुमको ये आश बाबा की पूरी करनी है और विश्व की सेवा करनी है। तो बस उसके बाद थोड़ा ठंडे हुए और फिर बैठे खड़े खड़े सब अनुभव हुआ मुझे उसी समय और फिर मैं भी बैठ गई और फिर तो बताया कि कैसे बाबा अव्यक्त हुए, अभी क्या होगा सब फिर मालूम पड़ा। लेकिन जो मेरे मन में प्रश्न था बाबा की आश मैंने पूरी नहीं की है और बाबा चले गए, बस फिर तो पढ़ना जितना था अप्रैल में एग्जाम्स थे वो पूरे करके ट्रेनिंग करने का निमंत्रण मिला और हम मधुबन आए। तो जब हम मधुबन में आए और ट्रेनिंग चली, हम लोग 30 कुमारियां थी, केवल 30, सब कॉलेज की पढ़ी हुई कुमारियां, कोई बीए करके आए थे, कोई बीएससी, कोई एमए, हमारी आशा बहन एमए करके आई थी, चंद्रिका बहन एलएलबी कर रही थी अहमदाबाद, वो एक साल करके आई थी, सब मानो पढ़ाई करके कॉलेज का की आई थी। और उनमें से कुछ ऐसी थी जो उन्होंने सोचा था कि हम फिर जाकर के आगे पढ़ेंगे और कुछ नहीं सोचा था कि नहीं हम तो अभी सरेंडर हो जाएंगे। तो हमने भी यही कहा था बस मुझे बाबा की आश पूरी करनी है, मुझे सरेंडर होना है। घर में बहुत कहा भी बीएससी हुआ तो एमएससी करो, ये करो वो करो। मेरे लौकिक भाई अमेरिका में रहते थे, वो कहे कि आप अमेरिका आओ मैं आपको बहुत पढ़ाऊंगा यहाँ। मैंने कहा अमेरिका नहीं जाना है, वहाँ माया है माया है, हमको अमेरिका नहीं जाना है। तो हमारी लौकिक बुआ हमको ज्योतिषी के पास ले गई थी कि भाई ये विदेश नहीं जा रहे, इसको बहुत बुला रहे हैं। तो फिर आ गई दादी आ गई अभी, और तो उस ज्योतिषी ने मेरी हाथ रेखाएं देखी तो क्या, या तो अमेरिका एक बार तो क्या 10 बार जाएंगी, बहुत घूमेगी, बहुत इनकी विदेश की लाइन है, मानो सारी जो कुछ मेरे विरुद्ध कुछ भी कंप्लेन थी वो ज्योतिषी ने तो सब पॉजिटिव ही बोल दिया। इतना तक कहा कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, मानो कि हर इच्छा इनकी पूरी होगी जो कुछ उस समय का, बड़ी बातें थी। खैर कहने का भाव है कि कैसे बाबा ने, बाबा की इच्छा हमको पूरी करनी है यही लगन में था और कुछ नहीं था। तो उसके बाद एक महीने की ट्रेनिंग हुई और उस ट्रेनिंग में बाबा ने एक बार हम लोगों से पूछा आप सब कौन हो, कौन हो। बड़े बड़े टाइटल्स कुमारियों ने दिए जो बाबा मुरलियों में टाइटल्स देते हैं, फिर पूछा आप कौन हो। तो जो बाबा की बुद्धि में टाइटल था वो तो किसी ने नहीं सुनाया, तो सबसे पूछा। 30 ही तो कुमारियां थी, बाबा 30 कुमारियों के लिए खास आए थे हिस्ट्री हॉल में, तब मेडिटेशन हॉल भी नहीं था पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में बिल्कुल बाबा के नजदीक, बाबा की गद्दी होती थी जैसे बाबा के कमरे में गद्दी है ना नीचे पट पर, वहां पर बाबा बैठे और हम 30 कुमारियों के साथ बैठे। तो फिर बाबा ने एक एक से पूछा, आप कौन हो, आप कौन हो? तो हर एक ने अपना अपना जवाब दिया था, और बाबा ने इतना सुंदर जवाब दिया, आप सभी जगत माताएं हो, आप सभी जगत माताएं हैं। अगर आप अपने आप को कुमारी समझेंगी ना, तो कभी भी आप निर्भय होके सेवा नहीं करोगे। हर एक कुमारी अपने को क्या समझे, मैं जगत माता हूँ। तो बाबा की आप में ये आश है कि जैसे कामधेनु उस दिन भी बाबा की मुरली में था, आप कामधेनु की बच्चियाँ, मास्टर कामधेनु हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। इसीलिए तो एक अकेली कामधेनु थोड़ी होगी, एक अकेली की महिमा थोड़ी है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ये इतनी सारी कामधेनु, इतनी सारी भाग्य विधाताएं, इतनी सारी जगत अम्बाएं हैं, सारी दुनिया की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तो हमने कहा पहले तो बाबा की कामना, बाबा की जो इच्छा वही पूरी करे, बाकी फिर दुनिया की इच्छाएं। तो इसीलिए बाबा ने हमें ये बहुत सुंदर टाइटल दिया, तुम जगत माता हो। कभी भी अपने को कुमारी नहीं समझना, क्योंकि कुमारी के आगे बहुत बातें आएगी। तुम जगत माँ हो, अम्बा हो। तो जैसे माँ अपने बच्चों की पालना करती, वैसे तुमको करनी है। तो देखो बाबा की कितनी आशाएं हैं कुमारियों के प्रति। और मुझे कैसी विचित्र बात थी, हम कन्याओं की ट्रेनिंग के बाद माताओं की ट्रेनिंग हुई, तो माताएं आई मधुबन में। बाबा ने माताओं से पूछा, आप कौन हो, कौन हो? तो शिव शक्तियां हैं, जगत अम्बा, ये सब का। बाबा ने तो और उल्टा कहा, आप सब ब्रह्मा कुमारियां हो। तो माताओं को बाबा ने कुमारी बना दिया, और कुमारियों को कहा आप जगत अम्बा हो, जगत माता हो। तो देखो ये भगवान की विचित्र लीला है, क्योंकि बाबा जब माताओं को देखते हैं, तो माताओं में जैसे गृहस्थी का बोझ उनको महसूस होता है, तो बाबा ने उनको कितना निर्भय बना दिया कि आप अपने आप को गृहस्थी क्यों समझते हो। तो कईयों ने कहा हम ट्रस्टी हैं, ये भी कहा, तो बाबा ने कहा गृहस्थी ट्रस्टी बने तो भी तो गृहस्थीपना तो है ही ना, आप कहो कि हम तो ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा बाप है हमारा, ब्रह्मा के साथ है हम नई रचना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा तुम नई रचना हो, स्थापना पूरी होगी तब तो विनाश होगा, ये नई रचना है, सतयुग की नई रचना हो रही है, ब्रह्मा की हम संतान है। तो मानो कि ये इतना बड़ा नशा है, जिस नशे से हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो इतना ये नहीं समझ रहे हैं, ये क्या आंदोलन हो रहा है, ये कैसा आंदोलन है, क्रांति है ये। क्योंकि शुरू में भी ये क्रांति हुई ना, तीन क्रांतियां हुई शुरू शुरू में, जो यज्ञ की स्थापना के समय पहली क्रांति थी साक्षात्कारों की, इतने साक्षात्कार जो हर एक को साक्षात्कार होते थे, और लोग खींच खींच के चले आते थे, क्योंकि साक्षात्कारों की धुन थी। श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, स्वर्ग का साक्षात्कार होता था, वैकुंठ में चले जाते थे, शहजादियां आती थी, क्या नहीं हुआ, साक्षात्कारों की धुन थी। और दूसरी क्रांति क्या हुई कि कुमारियां आई, उनको ज्यादा होते थे साक्षात्कार, पुरुषों को कम होते थे, कुमारियों को ज्यादा, छोटी छोटी कुमारियों को इतने साक्षात्कार होते थे, जिनको कुछ पता ही नहीं दुनिया का, उनको साक्षात्कार होते थे। और तीसरी क्रांति कुमारियां आई, तो कुमारियां उस समय जब माताएं भी थी, कुमारियां भी थी, सब चार दीवारों में रहती थी कुमारी, मजाल से यहां से वहां जा सके बिना पिता की परमिशन के। आजकल तो कितना स्वतंत्र है, उस समय तो जरा भी नहीं स्वतंत्रता कि बिना पूछे कहीं घर से बाहर भी निकल सके, ऐसी बात थी। हाँ, हैदराबाद सिंध में तो वो हमारी दादियां सब उसी रूप से पली है। तो इसी प्रकार इतना बंधन था, और माताओं को तो बहुत ही बंधन था, और पुरुष लोग जो थे वो तो दुनिया घूमते थे, क्योंकि उनकी बिजनेस सारी दुनिया में थी। सिंधी लोग, उनकी बिजनेस अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सारी दुनिया के कोने कोने में वो बिजनेस करते थे, और घर उनका हैदराबाद सिंध था, उनको सिंध वर्की कहते थे, बिजनेसमैन। अभी भी जो सिंधी बहुत बिजनेसमैन है तो कहाँ कहाँ उनकी बिजनेस होती है, तो उस समय तो बहुत ज्यादा थी। और सिंध बहुत धनवान स्थान था क्योंकि सिंधी लोग बहुत धनी थे। इसलिए जब हिंदुस्तान में आए, भारत में आए, तो हॉस्पिटल बांधे, कॉलेजेस खोले सिंधियों ने मुंबई में, जसलोक हॉस्पिटल और केसी कॉलेज बॉम्बे का, ये सब पाकिस्तान से जो सिंधी आए उन्होंने बनाए। तो कहने का भाव था कि स्त्रियों के ऊपर बहुत हदें थी, बहुत उनके ऊपर शोषण था, कन्याओं पर तो पूरा ही था, कुछ भी नहीं कर सकती थी। और यहाँ बाबा ने कन्याओं को इतनी शक्ति दे दी कि वो तो शेरनी शक्ति बन गई। तो ये क्रांति हो गई, तभी तो विरोध हुआ। पर बाबा घबराए नहीं विरोध से, इन कुमारियों में इतनी शक्ति थी। और फिर तीसरी क्रांति क्या हुई, बाबा ने सबको कहा कि अभी अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ, ये सारी कुमारियों को अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। और सब ने प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब इससे तो और विरोध हुआ समाज में, पर बाबा ने कैसे उसका सामना किया कि ये मैंने नहीं कहा, ये मेरी शक्ति नहीं है, न मैं साक्षात्कार करा सकता हूँ, न मैंने इन्हों को कराया, न कोई मैंने इनसे प्रतिज्ञा कराई है, ये सब परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति से ये सब चल रहा है, ये मेरी शक्ति नहीं है। पर जो विरोध करने वाले वो तो बाबा को ही देखते थे कि यही है, और ये कहता था मैं तो नहीं। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। वैसे भी लौकिक में बाबा कृपलानी जाति जो सिंधियों की होती है वो बहुत रॉयल है, माना ब्राह्मण जाति है, बहुत रॉयल। तो इसीलिए वाट वेंदे, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, क्योंकि बाबा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत उनका नाम था, मान था, इतना उतनी उनकी महिमा थी, इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े भक्त थे, तो ये सब कुछ थे उनके अंदर। और एक सेकंड में कैसे बाबा ने त्याग किया और एकदम सारे परिवार सहित बस सब कुछ कन्याओं के आगे समर्पित किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी। तो ये किसकी शक्ति ने शुरुआत की, ये सब शिव बाबा की शक्ति थी। तो बाबा तो देखते रह गए, ये कौन कर रहा है, ये कौन करा रहा है, ये मैं नहीं करा रहा हूँ। इसीलिए निर्भय थे, ये ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। अभी भी देखो लोग आते कहते हैं, पहले तो लोग सुनते नहीं थे, अभी लोग सुनते हैं और फिर कहते हैं आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और फिर ये कह देंगे कि आप लोग जो ज्ञान सुनाते हैं ना वो दूसरे सत्संग वाले भी सुनाते हैं, और सत्संगों द्वारा और महात्माओं द्वारा भी ऐसे ही सुनाया जाता है, वो भी ऐसे ही सुनाते हैं जैसे आप लोग सुनाते हो, तो आप भी ऐसे ही सुनाते हो जैसे, तो आप भी। लेकिन बाबा कहते हैं धीरे धीरे वो समय आएगा जब कहेंगे आप ही, क्या कहेंगे, आप ही। क्यों? क्योंकि उनको ईश्वरीय शक्ति नहीं है, उनकी अपनी आत्मा की शक्ति है, कोई नई आत्मा ही है। तो उस शक्ति से जैसे ज्ञान देते हैं या जो भी भाषण करते हैं, लेकिन उनका योग परमात्मा से नहीं, परमात्मा को तो जानते ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि कह दिया, ब्रह्म से योग है, ज्योति ज्योत समाना यही कहते हैं। और तो इसलिए जो योग परमात्मा से चाहिए, जिससे शक्ति आत्मा को मिले, वो तो इनके पास नहीं है। तो धीरे 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 क्या होगा, उनकी शक्ति कम होती जाएगी। और पवित्रता की शक्ति तो वो रुक की रही नहीं। जो बाबा कहते हैं ये सन्यासी महात्माएं गुरु गुसाई ये दुनिया को थमाने के लिए, भारत को थमाने के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति भी खत्म होती जा रही है क्योंकि परमात्मा से योग नहीं है। उनकी शक्ति तब कायम थी जब ये जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वहां पर इनका त्याग तपस्या थी। अभी तो शहरों में आ गए हैं, बड़े बड़े महल बना के रखे हैं। तो कई फिर हम लोगों को कहते हैं आप लोग भी तो सन्यासी हो, पर आप लोग भी तो बड़े बड़े मकानों में रहते हो। तो हम कहते हैं हम सन्यासी नहीं है, हम भगवान के खिदमतगार है, सेवाधारी है। हम सेवा करें भगवान को, नई दुनिया स्थापन करनी है, उसके लिए ये त्याग तपस्या सेवा है। लेकिन हम कोई सन्यासी नहीं है उनकी तरह जो गेरुए वस्त्र पहनते हैं। फिर कहते हैं आप लोग सफेद वस्त्र क्यों पहनते हो, हम कहते हैं ये हमारा यूनिफॉर्म है, मना थोड़ी है। रंगीन कपड़े पहनते हैं जो घर गृहस्थ में रहते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, नौकरी करते हैं, रंगीन पहनते हैं, मना तो है नहीं, लेकिन ये हमारा यूनिफॉर्म है और इस यूनिफॉर्म में हम सेवा करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म पहन के नौकरी करते ना, यूनिफॉर्म पहनना होता है। कई ऐसी कंपनीज है जहाँ पर सबको एक जैसा यूनिफॉर्म पहनना होता है, तो ये भी तो भगवान की बहुत बड़ी कंपनी है। हम यहाँ पर ये यूनिफॉर्म है हमारा, तो वो कहते हैं फिर वो तो चलो 8 घंटा यूनिफॉर्म पहना, फिर तो नहीं पहनते। हम कहते हम तो ऑल 24 आवर्स ऑन ड्यूटी, 24 घंटा ड्यूटी पर है। तो 24 घंटा ड्यूटी माना 24 घंटा पहनना पड़ेगा ना। जैसे जो हमारे आर्मी वाले वो जो ड्यूटी पर होते हैं, अभी देखो कश्मीर में या जहाँ सियाचल में या जहाँ भी वो रह रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, उनको 24 घंटा यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। अभी भी कल 21 जून को देखा हमने टीवी पर कैसे सियाचिन जो चाइना बॉर्डर है वो देश की रक्षा हो रही है, क्योंकि चाइना का भी अटैक कभी भी हो सकता है। इतनी ठंडी -25 डिग्रीज पर वो हमारे आर्मी के लोग रहे पड़े हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं पर वो यूनिफॉर्म में, अपने यूनिफॉर्म में। तो देखो कहाँ पर है, पर 24 घंटा ऑन ड्यूटी। मैं ले लद्दाख गई थी, वहाँ आर्मी क्वार्टर्स में हमारा भाषण था, लद्दाख कश्मीर से दूर तो और आगे, तो वहाँ हमने उनसे पूछा कि आप 24 घंटा ड्यूटी पर रहते हो तो कभी आपको लगता नहीं हम चेंज करें कपड़े, माना नॉर्मल ड्रेस पहने? तो कहते हैं बहन जी हम ये कर ही नहीं सकते, यहाँ तक कि जूते भी नहीं उतार सकते, जूते भी पहनने पड़ते हैं, पूरी ड्रेस, क्योंकि कभी भी हमको बुलावा आएगा उस समय हम कपड़े चेंज करेंगे क्या, उस समय जूते पहनेंगे क्या? फटाफट उसी सेकंड हमको निकल जाना होता है और सब तैयार, यहाँ तक कि वो बंदूक वो भी डाल करके तैयार ही लेते थोड़ा सा टाइम। अब देखो कितना उनका त्याग है। दादी दादी जी हमारे बीच आ रही है, हाँ देखो दादी को कितनी लगन है, बैठ जाए हाँ। और दादी देखो दिल्ली में गए थे 21 जून को, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ लाल किले पर, 50,000 बाबा के बच्चे थे जिन्होंने व्यायाम भी किया और योग भी किया। फिर दादी जी 20 तारीख को राष्ट्रपति से भी मिली, कैसे वो अभी भी आकर्षित कितने होते हैं, ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही है, इतनी उनकी आंखें खुल गई है। तो राष्ट्रपति ने खास निमंत्रण दिया और दादी जी वहां गए थे और 21 तारीख पूरा करके देखो वापस आ गए आप सबसे मिलने के लिए। दादी जान कीजिए इस उम्र में भी दादी की लगन देखो, दादी का उमंग देखो, दादी का उत्साह देखो, दादी की शक्ति देखो। हाँ ये किसकी शक्ति है, किसकी शक्ति है, हाँ किसकी शक्ति है, बोलो बाबा, बाबा की, जोर से बोलो, हाँ बाबा की, इंसान की तो नहीं है ना, किसी मनुष्य की ये शक्ति नहीं है, ये परमात्म शक्ति काम कर रही है। और उस परमात्म शक्ति के आकर्षण में आप सभी इतनी कुमारियां भाग भाग करके आई हो, हो सकता है आपको कुछ बंधन भी हो, कुछ हो, परंतु एक लगन जरूर रखना। कौन सी लगन? मुझे बाबा की सेवा करनी है, बाबा की आश पूरी करनी है। शांति।
संगम युग का ये परम संगम युग का ये परम सुख संगम युग की ये परम प्राप्ति वो ही है। यज्ञ की बाप समान आत्माओं की दृष्टि सकाश और वो वाइब्रेशन को पकड़ना। अभी ही हमने दो क्लास सुने, दोनों क्लास में सबसे पहला क्लास जो हमारा था दिलाराम की दिलरुबा दादी जी एस का रियल एग्जाम्पल है, और दूसरा क्लास कुमारियों के प्रति बाप दादा की आशाएं। दादी जी के क्लास में हमेशा हम सब ये बात प्राप्त करते हैं कि कैसे जल्दी जल्दी बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करें। ऐसी मीठी प्यारी दादी जी जो एक गोपी का, एक बाबा की सच्ची सजनी का रियल एग्जाम्पल हम सब कन्याओं के लिए रही हैं, आज हम कन्याओं की इस भट्टी में हम सब के बीच विशेष समय निकाल करके पधारे हैं। दादी जी कुमारियों के बीच आपका दिल से स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। चलो 80 साल के योगी जीवन के वो वाइब्रेशन को हम स्वयं में समालें, बाप समान स्थिति के वो प्रकंपनों को हम बटोर लें और भगवान की आशाओं को इन दृष्टि से स्वयं में स्वीकार कर लें। तो चलो बाबा के पास।